नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी जिलों में गुरुकुल पद्धति पर आधारित संस्कृति विद्यालय खोले जाएंगे। लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को मॉनसून सीजन में सजग और तत्पर रहने के निर्देश दिए। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने कहा, आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कुंभ से जुड़े सभी स्थायी और अस्थायी कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरे करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी जिलों में गुरुकुल पद्धति पर आधारित संस्कृति विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए संस्कृति विभाग ठोस प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंपेगा। साथ ही आश्रम पद्धति की तर्ज पर दुरुस्त क्षेत्रों में आवासीय संस्कृति विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। संस्कृत महाविद्यालयों के सही वर्गीकरण और शिक्षकों को समय पर पदोन्नति देने के लिए अधिनियम 2023 में संशोधन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने के लिए पिछड़े विकास खंडों में भी आश्रम पद्धति आधारित विद्यालय की स्थापना के निर्देश दिए हैं। बैठक में संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, संस्कृत विश्वविद्यालयों में कुलपति सचिव की नियुक्ति, बीएड पाठ्यक्रम और परीक्षा भवन निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को मॉनसून सीजन में सजग और तत्पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान सड़कों के अवरुद्ध होने से यात्रियों को भारी परेशानी होती है, ऐसे में मार्गों को शीघ्रता से खोलना विभागों की प्राथमिकता होनी चाहिए। देहरादून स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में श्री महाराज ने कहा कि अगर अधिकारी सजगता से करेंगे तो मॉनसून का समय बिना अवरोध के पार किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बंद सड़कों की सूचना यात्रियों को समय रहते दी जाए ताकि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जा सके। लोक निर्माण मंत्री ने मलबा हटाने वाली मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता, नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। बैठक में मैदानी क्षेत्रों में जल भराव और बाढ़ के खतरे को देखते हुए ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर दिया। सिंचाई विभाग ने बताया कि सभी जिलों में नोडल बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए जा चुके हैं और देहरादून में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। राज्य में 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई है और 304 संवेदनशील स्थानों की पहचान कर ली गई है। नदियों की जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है और सभी अधिकारी हर वक्त मोबाइल पर उपलब्ध हैं। चमोली जिले में देर रात हुई भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और उमुमा के पास यातायात के लिए बाधित हो गया है। लगातार हो रही बारिश और इससे हो रहे भूस्खलन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली दर्जनों सड़कें बंद है। जिला प्रशासन की ओर से सभी सड़कों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य में लागत बढ़ने पर गहरी नाराजगी जताई है। दून मेडिकल कॉलेज में हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की समीक्षा बैठक में डॉ. रावत ने कार्यदायी संस्था और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। बैठक में कार्यदायी संस्थाओं ने निर्माण कार्यों पर प्रस्तुतिकरण दिया, लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने लागत में बार बार बढ़ोतरी को अनुचित ठहराते हुए कहा कि यह प्रथा बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाते समय भवन निर्माण मानकों का पालन करते हुए सटीक आकलन किया जाना चाहिए और अनुबंध के अनुसार समय पर कार्य पूरे किए जाएं। बैठक में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए 200 नाले अतिरिक्त भूमि खरीदने और कॉलेज चिकित्सालय को जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. रावत ने यह भी कहा कि जिन मेडिकल कॉलेज और छात्रावासों के भवन बन चुके हैं उन्हें विधिवत रूप से हैंडओवर किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड के शुरू होने के बाद राज्य में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार नियोजन की चुनौती पर अभी से सक्रियता से कार्य कर रही है। ट्रैफिक समस्या और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र से 26 किलोमीटर लंबी रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है। साथ ही पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिए सुविधाएं उपलब्ध उपलब्ध कराने के लिए नीति आयोग से विशेष ग्रांट की मांग की गई है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड हर क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, राज्य SDG इंडेक्स में पहले स्थान पर है और देश में GEP लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य के 6,500 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को मरीजों की सुविधा के लिए अब कई जरूरी बदलाव करने होंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक वार्ड में योजना का टोल फ्री नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि मरीज या उनके परिजन किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत संपर्क कर सके। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कई बार लाभार्थियों से धन वसूली या भ्रम फैलाने की शिकायतें प्राप्त होती है जिन पर रोक जरूरी है। इसके लिए अस्पतालों को आयुष्मान योजना से संबंधित जानकारी के डिस्प्ले बोर्ड भी लगाने होंगे जो हिंदी और स्थानीय भाषा में होने चाहिए। बैठक में बताया गया कि अस्पताल परिसर में ICU के निकट वेटिंग रूम की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। कतारों से निजात दिलाने के लिए टोकन डिस्प्ले, प्रतीक्षा कक्ष की उचित व्यवस्था और मरीजों के फीडबैक फॉर्म को भी अनिवार्य किया गया है। श्रीमती जोशी ने सभी अस्पतालों से इन निर्देशों के अनुपालन की जानकारी तय समय सीमा में देने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि कुंभ से जुड़े सभी स्थायी और अस्थायी कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। कार्यों की समय सीमा को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों से तय समय में काम पूरा करने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के नोडल अधिकारियों की शीघ्र नियुक्ति और प्रमुख स्नान पर्वों के अनुसार श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या के आधार पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भीड़ के अनुसार घाटों की संख्या भी बढ़ाई जाए और मेला अधिकारी सभी हितधारकों से लगातार संवाद बनाए रखे। बैठक में कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर A, B और C श्रेणियों में बांटने और जरूरी कार्यों को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर विभागों को भूमि आवंटित की जानी है वहां से अतिक्रमण हटाया जाए और कुंभ मेला क्षेत्र से सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाए। इस दौरान हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक को 20 अगस्त 2025 तक यातायात और पार्किंग की योजना मेलाधिकारी को सौंपने के भी निर्देश दिए गए। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशी, इस शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, नामांकन के पहले दिन 2,167 लोगों ने भरा पर्चा। आपदा प्रबंधन में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी, 522 सखी होंगी तैयार, दैनिक जागरण की खबर है। समाचार पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकाल के 5वें वर्ष में इस योजना को करेंगे लॉन्च। उत्तराखंड के हर जिले में खुलेगा गुरुकुल पद्धति विद्यालय, अमर उजाला इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। नरेंद्र नगर के पास कैंटर पलटने से 3 श्रद्धालुओं की मौत की खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है कांवड़ियों के लिए भंडारा शिविर लगाने गंगोत्री जा रहे थे श्रद्धालु, हादसे में 18 लोग घायल, सीएम धामी ने भी जताया दुख। और उत्तराखंड के मौसम की खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र ने लिखा है देहरादून समेत 4 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार, प्रदेश के सभी जिलों में गुरुकुल पद्धति पर आधारित संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को मॉनसून सीजन में सजग और तत्पर रहने के निर्देश दिए। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने कहा आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कुंभ से जुड़े सभी स्थायी और अस्थायी कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।